प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में दूसरी इकाई के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियां तक अध्ययन कर लिया है। आज नेक्स्ट टॉपिक इसी में प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य, प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और याद करें। प्रधानमंत्री की स्थिति, हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। हमारे देश भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारे भारत देश में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में दो स्वरूप होते हैं एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली के दो स्वरूप कौन से होते हैं? एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान का अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हुआ और नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति हुआ, क्योंकि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में कहा गया है। हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर प्रणाली के मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। यानी ये पूछ लिया जाए, संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश भारत में किस देश के देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर प्रणाली के मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हैं और इसी आधार पर समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वही करता है, वह राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता और मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता होता है। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 16वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के पद की शक्तियां व प्रतिष्ठा काफ़ी हद उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व, कार्यशैली व उसके दल के लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है। भारत में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी व नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए, जो मिलीजुली सरकारों के दौर में HD देवेगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल जैसे कम शक्तिशाली नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री का लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद की संरचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के निर्माण में पहला कदम होता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? अनुच्छेद 74 में उल्लेखित हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय प्रणाली के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। वह एक निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश देता है। तो मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है या 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है और मंत्रिपरिषद की बात अनुच्छेद 74 में कही गई है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख प्रावधान अनुच्छेद 75 में मिलता है। मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों की विभागों का आवंटन भी स्वयं करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है जिसे राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। वह उन्हें शपथ ग्रहण की रस्म भी अदा करवाता है। वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के मुख्य तीन प्रकार बताए गए हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। मंत्री मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री ये किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री ये किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार होता है इनके पास। राज्य स्तर के मंत्री, ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, इनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। सामान्यतया इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है। तीसरा हुआ उप मुख्यमंत्री। तीसरे दर्जे के मंत्री को उपमंत्री कहते हैं, ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करने वाले मंत्री होते हैं उपमंत्री। हाल ही के वर्षों में संसदीय सचिव नियुक्ति करने की परंपरा पनपी है, हालांकि संवैधानिक रूप में उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जाती है और न ही कोई प्रशासनिक दायित्व सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है तथा उन्हें पद की शपथ दिलवाता है। इनका काम विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना है। तो इस प्रकार मंत्रियों के प्रकार भी तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तीन प्रकार के, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और तीसरे उपमंत्री। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का आकार। 91वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में पारित हुआ, जिसे 2004 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था, 2004 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 91वां संवैधानिक संशोधन ये मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है कि पूछ लिया जाए कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करता है। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? लोकसभा में, लोकसभा की कुल सीटों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे मान लें वर्तमान में भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या कुल कितनी है, पिछले अध्याय में अपने चर्चा की है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545 का 15%, लगभग 82 मंत्री। तो भारत में लगभग कितने मंत्री हो सकते हैं? 82 मंत्री हो सकते हैं। तो इस प्रकार 91वां संवैधानिक संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार भी तय कर दिया गया है। इसी प्रकार से विधानसभाओं में भी यही आकार निश्चित है, 15%। जैसे मान लिया जाए राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 200 का 15% कितने हुए, 30। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं राज्य सरकार विधानसभा में। कार्यकाल, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। साधारणतया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चलता है। तो इस प्रकार कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 75 में दिया गया है। पद की शपथ, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। एक पद की शपथ, पद के प्रति शपथ, और दूसरी गोपनीयता की शपथ। पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री को कौन से दो तरह की शपथ दिलाई जाती है, एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। सप्त कर्तव्यों की ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती हैं। गोपनीयता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णयों को गुप्त रखेंगे। तो गोपनीयता से तात्पर्य क्या निकला, प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा दोनों का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है और लोकसभा का भी नेता होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी व प्रधानमंत्री का ये दायित्व है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी व प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो मंत्रिपरिषद के लिए लिए गए सभी निर्णय से अवगत कराएं। मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। संघ सरकार के प्रशासन व विधायी व अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। विभागों का आवंटन। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है, साथ ही विभिन्न कार्यालयों व विभागों में काम का भी बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच काम का समन्वय करता है। मंत्रालयों का प्रभारी। प्रधानमंत्री कुछ विभागों या पोर्टफोलियो अपने पास रखता है जिसका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो, वह साधारणतया अपने पास रखे विभागों मंत्रालयों का प्रभारी होता है। मंत्रिमंडल का नेता। प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। वह इन बैठकों में क्या कार्य और विचार करना है उसके बारे में निर्धारण करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता भी होता है, मंत्रालयों का प्रभारी भी होता है। मंत्रिमंडल का नेता। प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। वह इन बैठकों में क्या कार्य है विचार विमर्श होंगे उसका भी निर्धारण करता है। संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी का कार्य। प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। वह लोकसभा का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री का इस रूप में ये दायित्व है कि वह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करें। प्रधानमंत्री संसद में सामान्य महत्व की बहस में हस्तक्षेप कर सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए अपना पक्ष रख सकता है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों व मुद्दों पर दूरदर्शन एवं रेडियो पर संबोधित करता है। इस प्रकार ये प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में चर्चा की है। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां एवं कार्य हैं? शक्तियां कहो चाहे कार्य कहो, अधिकार कहो, एक ही बात है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। वह सरकार का मुखिया होता। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक हैं। वह सरकार के मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माणक संस्थाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है और नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दूसरा कार्य। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है। तीसरा कार्य। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। फोर्थ कार्य। प्रधानमंत्री केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्ताव के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। केंद्र प्रशासन तथा विभिन्न विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। पांचवा कार्य, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। छठा कार्य, वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। सातवां कार्य, मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है। मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है। आठवां कार्य, संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। नौवां कार्य, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। केंद्र में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। दसवां कार्य, प्रधानमंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। ग्यारहवां कार्य, प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है एवं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी प्रधानमंत्री स्वयं लेता है एवं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री की स्थिति एवं संपूर्ण कार्यों के बारे में अध्ययन किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लिखें, प्रधानमंत्री के चार कार्य लिखिए, प्रधानमंत्री के चार कार्य लिखिए। आंसर लिखें, प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रमुख नेता के रूप में कार्य करता है। दूसरा कार्य लिखें, मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है। मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है। तीसरा कार्य लिखें, संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी का कार्य करता है। संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी का कार्य करता है। चौथा कार्य लिखें, वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। दूसरा प्रश्न लिखें, गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, मंत्रिपरिषद के आकार को समझाइए। मंत्रिपरिषद के आकार को समझाइए। मंत्रिपरिषद के आकार को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न लिखे हैं, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 74 किससे संबंधित हैं? नेक्स्ट प्रश्न लिखे हैं, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान है या किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न लिखें, मंत्री मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, मंत्री मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। अंतिम प्रश्न लिखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसी के साथ आज हमारा दूसरी इकाई का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम अगली क्लास में दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। आज हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।